नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार मिले। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए आचार संहिता के विषय में देखा था और आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और अध्याय 22 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस नई श्रृंखला में हम आपको अनेकों सामाजिक न्यायिक व्यवस्था से परिचय कराएंगे, जिनको जान और समझ कर आपको बहुत लाभ होगा। इस अध्याय में हम कुछ मुख्य विषयों पर विचार करेंगे, चोरी, क्षतिपूर्ति, अतिक्रमण, उधार लेना और देना, व्यभिचार, जादू टोना, पशुगमन, मूर्ति पूजा, प्रवासी और विधवाओं संबंधी नियम। टिप्पणी में हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक का 21 से 24 अध्याय में सामाजिक न्याय व्यवस्था का विवरण है। जिस समाज को हम सभ्य तथा सम्भ्रांत कहते हैं, उनके लिए यह आधारभूत न्याय सिद्धांत है। पहले हम देखेंगे संपत्ति क्षतिपूर्ति से संबंधित नियम। वर्तमान काल में बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि सही और गलत क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि सही गलत एक प्रासंगिक शब्द है। एक बार एक कॉलेज प्रोफेसर जो नास्तिक थे मुझसे इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उसका कहना था कि ये प्रासंगिक शब्द है, जो वह सोचते हैं सही है और जो मैं सोचता हूँ सही है, इन दोनों के बीच एक छोर से दूसरे छोर तक भारी अंतर है। तब उन्होंने मुझसे पूछा, किस आधार पर आप अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं? मैंने कहा, परमेश्वर के वचन के आधार से। मैंने उसे बताया कि मेरा स्वभाव भी ठीक उसी स्वभाव से मिलता जुलता है और निश्चित स्थानों पर मैं झुक जाता हूँ और कभी कभी यहाँ वहाँ डोल सकता हूँ, परंतु ईश्वर ने मेरे सामने कुछ मापदंड रखे हैं जिनका मुझे पालन करना है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ईश्वर के मापदंड ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जिसमें काफी हद तक न्याय का विधान है। अध्याय 21 से 24 में पाए जाने वाले नियम हमारे प्रतिदिन की छोटी और बड़ी सभी समस्याओं से जूझते हैं। कभी कभी पढ़ने में अरुचिकर लगते हैं और लगता है कि हम कानून की पुस्तक पढ़ रहे हैं, परंतु हमारे देश के नियम भी इन्हीं पर आधारित हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि वचन कहता है, तू हत्या न करना। इससे मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा होती है। मुझे खुशी है कि बाइबल में लिखा है, तू चोरी न करना। इससे मेरी थोड़ी जमीन अर्थात भूमि की सुरक्षा बनती है। इस प्रकार के और भी अनेक नियमों से समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहती है। मित्रों, हम निर्गमन की पुस्तक उसके 22 अध्याय के एक पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ व बकरी चुरा कर उसका घात करे व बेच डाले, तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। मैं आपको यह नहीं समझा सकता कि एक बैल की क्षतिपूर्ति के लिए 5 बैल और एक भेड़ के लिए 4 भेड़ क्यों ठहराई गई है। नए नियम में जक्कई ने भी इन नियमों की ओर संकेत किया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ, जिसे हम लुकार्ची सुसमाचार उसके 19 के 8 पद में पाते हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? कारण कि वह मूसा की व्यवस्था की ओर इशारा करता है। हमारा नियम वर्तमान में भी यही बताता है, यदि तुम किसी दूसरे मनुष्य के संपत्ति को हानि पहुंचाते हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। हमारे समाज की मांग भी यही है, जब आप दूसरे की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं तो उस वस्तु को दूसरे से वापिस करना अथवा उसका मूल्य चुकाना होगा। मनुष्य का स्वभाव जिस प्रकार का है, उसकी अपेक्षा परमेश्वर का नियम चौगुना लौटाने का अधिक बेहतर है। किसी वस्तु की तोड़फोड़ या टूटने से यदि हमें चौगुना भरना पड़े तो निश्चित है कि हम अधिक सावधान हो जाएंगे। मित्रों, मानवीय स्वभाव सदैव एक सा है और परमेश्वर भी सदैव एक सा है। जो कुछ भी मनुष्य के लिए बेहतर होगा उसी के अनुसार परमेश्वर मानव से व्यवहार करते हैं। हम निर्गमन 22 के 2 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके खून का दोष न लगे। मित्रों, व्यवस्था से ही आपको स्वयं सुरक्षा का अधिकार मिलता है। कुछ दिन पूर्व एक चोर चुपके से किसी गृहस्थ के घर में घुसा और घर के स्वामी ने उसे गोली चला दी। उसने गृहस्थ पर क्षतिग्रस्त वस्तुओं की हानिपूर्ति के लिए सैकड़ों और हजारों रुपयों का मुकदमा चलाया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और चोर मुकदमा जीत गया। इसका कारण कि मूर्ख जज ने दोष लगाया कि गृहस्थ को गोली चलाने का अधिकार नहीं था। उस क्षतिपूर्ति के लिए गृहस्थ को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी और चोर के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। मित्रों, हमारे दिनों में दोषी को बचाने पर अधिक जोर दिया जाता है और निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है। परमेश्वर का नियम मनुष्य का घर और संपत्ति सभी की रक्षा करता है। इसी न्याय सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति का घर, संपत्ति और प्रियजन सभी की सुरक्षा निश्चित की जाती है। परमेश्वर के नियम समाज में न्याय व्यवस्था लाने के मौलिक सिद्धांत हैं। निर्गमन की पुस्तक में वर्णित परमेश्वर के सामाजिक नियमों का पालन मानव जाति गंभीरता से करे तो हमें सामाजिक समस्याओं का सामना ही करना ना पड़े। यह समस्याएं प्रतिदिन सड़कों पर और संयुक्त राज्य के प्रत्येक नगर के अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमारा संपूर्ण न्यायिक ढांचा जो वचन पर आधारित था अब उन मनुष्यों द्वारा संचालित है जो बाइबल को नहीं जानते, क्योंकि वह उनकी समझ से परे है। उनकी संपूर्ण पृष्ठभूमि इस प्रकार की है कि वे व्यवस्था अर्थात नियम की सही व्याख्या नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राज्य का संविधान जिन लोगों के द्वारा लिखा गया वे सभी मसीही नहीं थे। अधिकतर लोग देववादी थे, परंतु निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन का आदर करते थे। मुझे किसी ने बताया कि थॉमस जेफरसन बाइबल का मजाक उड़ाता था, परंतु ऐसा नहीं था। थॉमस जेफरसन की अनेक उक्तियों से पता चलता है कि उसके मन में वचन के लिए आदर और सम्मान था। यद्यपि वह आशय कर्म पर विश्वास नहीं करता था और व्यक्तिगत जीवन में अनुकरण भी नहीं करता था, परंतु वर्तमान में ऐसे लोग हैं जिनका पृष्ठभूमि बाइबल नहीं है और वे शासन करते हैं। इसलिए आजकल हम अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे, अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। मित्रों, यदि कोई मनुष्य चोरी करता है तो चोरी की गई वस्तु की वापसी के लिए स्वयं को गुलामी में बेचकर भरने के लिए तैयार रहना था। हम आगे 22 के 5 पद में पढ़ते हैं, यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत व दाग की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की ओर अपनी दाग की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि किसी मनुष्य की गाय या भेड़े दूसरे के खेत में घुसकर किसी प्रकार का नुकसान व हानि पहुंचाती है तो उसे भी वापस करने का आदेश था। हम निर्गमन 22 के 6 पद में पढ़ते हैं, यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए और फलों के ढेर व अनाज व खड़ा खेत जल जाए तो जिसने आग लगाई है वह हानि को निश्चय भर दे। मित्रों, यह बहुत ही उपयुक्त पद है जिससे हमें सही प्रकार से काम करने का ढंग प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए यह एक दूसरा मूल सिद्धांत है। परमेश्वर ने मूसा की पद्धति से इसराइल को संसार के अन्य राष्ट्रों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। हम निर्गमन की पुस्तक के 22 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसला कर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल दे के उसे ब्याह ले। दूसरे शब्दों में, यदि कोई मनुष्य किसी लड़की का कुंवारीपन को हटाता है तो उससे विवाह करना अवश्य होगा, परंतु हमारे युग व समय में निश्चय ही इन बातों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम निर्गमन 22 उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपये तौल दे। यदि लड़की का पिता उस व्यक्ति को अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं होता है तो उस व्यक्ति को जो कुछ उसने किया है उसका दंड चुकाना पड़ेगा। आगे हम पढ़ते हैं निर्गमन 22 के 18 पद में, तू डाइन को जीवित रहने न देना। आजकल हमें शैतान की पूजा पाठ तथा अलौकिक वस्तुओं पर अधिक विश्वास देखने को मिल रहा है। यह रुझान वास्तविक है। इस विषय पर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अध्ययन विस्तार पूर्वक से करेंगे। हम निर्गमन 22 के 19 में आगे पढ़ते हैं, जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। मित्रों, किसी पशु के साथ संभोग करने से ज्ञात होता है कि मनुष्य कितना नीच और पतित हो सकता है। परमेश्वर ने ऐसा नियम क्यों बनाया? क्योंकि आज हमारी प्रभुत ज्ञान संपन्न सोसाइटी अर्थात समाज में इस प्रकार के पतित और घृणित कार्यों की बाढ़ सी आ गई है। हम निर्गमन 22 उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह सत्यानाश किया जाए। मित्रों, निसंदेह ही यह सबसे कठोर दंड था। यदि इसका अक्षरशः पालन किया जाए या पालन किया होता तो निश्चय ही एक नया समाज बनता। किसी दूसरे देवता को बलि चढ़ाने पर मृत्यु दंड, यह परमेश्वर की कठोर कथन है। परंतु सच बात तो यह है कि जब आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है तो आप उससे तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी बात की चर्चा परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। परमेश्वर की यह अच्छे पड़ोसी वाली नीति है। हम निर्गमन 22 के 22 पद में पढ़ते हैं, किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। मित्रों, बाल श्रमिक मजदूरों के नियमों की स्थापना भी इसी के आधार पर शायद की गई होगी। संसार के महान आंदोलन का उद्गम आधार परमेश्वर का वचन है, जिससे मानवता को बहुत आशीषें प्राप्त हुई है। उन बच्चों के बारे में क्या जो अनाथ और बेसहारा हैं? अनाथालयों का आरंभ किन्हीं सम्राट देशों की ही देन है, अथवा इसका श्रेय मसीही जगत को जाता है। हम निर्गमन 22 उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर असहायों की सुरक्षा करता है। जरूरतमंदों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर महान्याय आने वाला है। हम निर्गमन 22 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो मेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन की नाय ब्याज न लेना। यदि एक व्यक्ति दूसरे को पैसा उधार में देता है, तो उसे ब्याज अधिक मात्रा में नहीं वसूलना चाहिए। परमेश्वर का कथन है कि दूसरों से लाभ न उठाना अर्थात लाभ उठाना गलत है। ये परमेश्वर के कुछ नियम हैं, और इसका वर्णन हमें निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय में विस्तार पूर्वक मिलता है। मित्रों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है, और अब हम अध्याय 23 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, और इसमें हम कुछ विषयों को देखेंगे, जैसे अफवाह फैलाना, अन्यायी साक्षी, न्याय और निष्पक्षता, विश्राम का वर्ष, सप्त का दिन, मूर्ति पूजा, तीन पर्व, बलिदान और स्वर्गदूत संबंधी प्रतिज्ञा एवं नियम। सबसे पहले हम देखेंगे संपत्ति संबंधी और अनेक नियम। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। सावधान रहो कि क्या कहते हो, यह परमेश्वर की चाल चलन अर्थात आचरण संबंधी नियम है। अफवाह फैलाने वाला एक हत्यारे जैसा ही बुरा होता है, इसी प्रकार एक चोर अथवा व्यभिचारी भी। परंतु हमारे समाज में किसी गपशप करने वाले को लोग आसानी से स्वीकार करते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साक्षी देना। मित्रों, यदि हमें परमेश्वर के नियम का पालन करना पड़ता कि बुराई के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना, तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना कठिन हो जाता, और हमारा समाज भी जो गुंडों की टोली के समान उत्पात मचाता है बच जाता। इस प्रकार के एक आकर्षित करने वाले युवक से मैंने पूछा, उसने उत्तर दिया कि उसने सुंदर पहरावा इसलिए पहना है क्योंकि उसे आजादी एवं स्वतंत्रता चाहिए। मैंने ध्यान से देखा कि उसके समान ही कपड़े पहने कई हजार और भी लोग हैं। अतः मैंने फिर से पूछा, क्या तुम अलग पहरावा पहनना पसंद करोगे, वे तुम्हें ग्रहण करेंगे? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब मैंने कहा, जब वे विरोध प्रदर्शन करते हैं तो तुम्हें एक कतार में खड़ा होना होता है, ठीक है? उसने उत्तर दिया, हाँ। तब तो तुम्हें वास्तव में कुछ भी आजादी नहीं। मैंने पूछा, क्या यह सच नहीं? जब वे विरोध करते हैं तो तुम्हें भी करना होगा। जब वे एक विशेष वस्त्र पहनते हैं तो उसी प्रकार का वस्त्र तुम्हें भी पहनना पड़ता है, यह तो आजादी नहीं। मेरे मित्र, किसी बुराई को करने के लिए बहुतों के पीछे हो लेने से स्वतंत्रता नहीं होती, अर्थात आप स्वतंत्र नहीं हैं। हम निर्गमन की पुस्तक के 23 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। मित्रों, न्याय में धनी का पक्ष लेना और निर्धन का पक्ष लेना दोनों ही न्याय संगत नहीं है। मुकदमा और न्याय दोनों ही में निष्पक्षता होनी चाहिए। रोमन लोगों ने न्याय की तुलना एक ऐसी महिला से की है जो कोमल है पर अंधी और हाथ जोड़े है। वह किसी का पक्षपात नहीं करती, और उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तराजू है। तलवार का अर्थ जब न्याय का निर्णय होगा तभी दंड भी मिलेगा। तराजू का मतलब न्याय निष्पक्ष होगा, और न्याय बिना भेदभाव पक्षपात के होना चाहिए। मित्रों, सातवां वर्ष और सातवां दिन संबंधी नियम। परमेश्वर पुनः एक बार इसराइल को विश्राम दिवस और सातवें साल के नियम को प्रदान करते हैं। हम निर्गमन उसके 23 अध्याय के 10 और 11 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसकी पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाएं, और जो कुछ उनमें से बचे वह वनेले पशुओं के खाने के काम में आए, और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही करना। मित्रों, परमेश्वर इसराइल के साथ इस नियम पर पुनः विचार करेगा जब वे अपने देश में निवास करेंगे, अर्थात विश्राम दिन, 7वां साल और जुबली वर्ष संबंधी सभी नियमों की चर्चा लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमें मिलती है। संक्षेप में, विश्राम दिन सप्ताह का 7वां दिन होता है और यह पूरी तरह आराम का दिन है। 7वां साल खेती की उपज से विश्राम पाने का समय है। जुबली वर्ष को स्वतंत्र वर्ष भी कहा गया है, और इब्रानी लोगों के लिए जिन्होंने अपने को गुलामी में बेच दिया था, अब आजाद होकर हर 50वें वर्ष की जुबली करके मनाते हैं। बेची हुई सभी भूमि उसके मूल मालिक को लौटा दी जाती थी, और दिलचस्प बात तो यह है कि वे लोग जो अपने को सप्त दिन मनाने वाले मानते हैं केवल विश्राम दिन का पालन करते थे। वे 7वां साल यदि कृषक हैं तो नहीं मनाते और जुबली वर्ष का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। अब हम आगे देखते हैं 3 राष्ट्रीय पर्व। हम निर्गमन की पुस्तक के 23 अध्याय और उसके 14 पद से 17 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए, और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए, और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुख दिखाएं। मित्रों, प्रत्येक वर्ष में 3 बार प्रत्येक इब्रानी पुरुष को यरूशलेम में परमेश्वर के सामने हाजिर होना पड़ता था। 3 प्रमुख पर्व मनाए जाते थे, अखमीरी रोटी का पर्व, कटनी का पर्व, संग्रह पर्व अर्थात बटोरने का पर्व, फसा का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व, झोपड़ी का पर्व। आपको स्मरण होगा कि मिस्र देश की गुलामी से छूटने के बाद और वहां अनेकों विपत्तियों से सुरक्षित रहने की खुशी में वे इस पर्व को मनाते थे, परंतु इसके पहले वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए। इन सभी का विस्तार पूर्वक चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं प्रतिज्ञाएं और निर्देश, इसराइल का भूमि पर विजय होना। निर्गमन उसके 23 अध्याय के 20 और 21 पद में, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। मित्रों, एक प्रश्न जो सदैव उठता है कि यह दूत कौन है। धर्मशास्त्र में इस प्रकार प्रकाश डाला गया है, जिसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में पाते हैं, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। मित्रों, यह प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं हैं जिसकी आज्ञा उन्हें माननी थी। इस स्थान पर उन्हीं की ओर संकेत किया जाता है। हम निर्गमन 23 के 23 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर ने इसराइल को बताया कि उसका नेक इरादा शत्रु को उसके पापों के कारण देश से निकालने का है। अब प्रभु उनसे निम्न बातों को कहते हैं, जिसे हम 23 उसके 27 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। मित्रों, परमेश्वर ने उसके इरादे को इसराइल पर प्रकट करके कहा कि वह देश उनका ही होगा। तब हम 23 अध्याय के 32 और 33 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाएं, ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनकी देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। इसराइली लोगों को उस देश के लोगों से किसी भी प्रकार का संधि या वाचा नहीं बांधनी थी और न ही उनके देवताओं के साथ भी। यहोशू ने सिबोन निवासी के साथ भूल से वाचा बांधी और इसके पूर्व कुछ भी जांच पड़ताल नहीं की। निसंदेह इसका कारण इसराइली राष्ट्र को बाबुल की गुलामी में जाना पड़ा, क्योंकि वे मूर्ति पूजा करने लगे और दूसरे देवताओं की भी सेवा की। मित्रों, यहां पर आज हमारा समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से आपको इस वचन के द्वारा से आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। मित्रों, अगले सत्र की श्रृंखला में हम अवश्य ही आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए विषय के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। तब तक आप प्रभु के इन वचनों पर अवश्य विचार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तू